पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश, अध्याय 7, पवित्र आत्मा हमारा सुसमाचार का साथी। शाम को जो सूर्य की किरण हिमालय के पहाड़ों पर पड़ रही थी, वे बहुत ही लुभानी लग रही थी। नेपाल की उस घाटी में प्राकृतिक की सभ्यता और खूबसूरती आधुनिकता से अनछुई और निर्मल दिखाई पड़ रही थी। बहुत से मोड़ पर मुड़ते और धूल भरे कच्चे रास्ते पर झटके झेलते हुए हम एक छोटी सी मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहे थे। मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि यदि मैं अपने नेपाली दोस्त से बिछुड़ गया तो मैं कहीं खो ना जाऊं। हमारा सफ़र बहुत ही थका देने वाला था और अंत में हम एक छोटे से हाउस चर्च में पहुंचे, जहां केवल 15 लोग मौजूद थे। उन्होंने नेपाली भाषा में आराधना करना शुरू किया और मैंने आत्मा में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। थोड़े समय में मेरा ध्यान एक बुजुर्ग महिला की ओर गया और आत्मिक क्षेत्र में मुझे दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि एक सफ़ेद बुधा पारदर्शी छाया उसके शरीर के ऊपर प्रकट हुई। मुझे याद नहीं कि वह सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था या दर्शन में देखा था। एक क्षण उसकी ओर देखने पर पवित्र आत्मा ने मेरे जेहन में डाला कि यह एक सताने वाली आत्मा है। जैसे ही वह आराधना का गीत समाप्त हुआ, मैंने पास्टर से कहा कि मेरे साथ मिलकर उस महिला के लिए प्रार्थना करें। मैंने उस महिला से कुछ सवाल नहीं पूछा और जो मैंने आत्मा में देखा था उसके मुताबिक उस महिला के लिए सीधे प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। मैंने कहा, सताने और दुख देने वाली आत्मा, मैं तुझे बांधता हूँ और उस महिला में से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। उस महिला पर विश्वास के साथ हाथ रखते हुए मैंने प्रभु की चंगाई की उपस्थिति और सामर्थ्य को उस महिला के शरीर में रिहा किया। फिर मैंने पास्टर से कहा कि उस महिला से पूछे कि उसे शरीर में क्या समस्या थी। पता चला कि बहुत साल से उसकी रीढ़ की हड्डी में, छाती और हृदय में दर्द था और उसके पांव में जलन महसूस होती थी। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो इन सब बीमारियों के लक्षण और दर्द पूरी तरह से गायब हो गए और वह बीमारियों से पूरी तरह आज़ाद महसूस कर रही थी। पिछले दिनों उस महिला ने यीशु को ग्रहण किया, परिणाम स्वरूप उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपना समय सड़क पर भीख मांग कर भी गुजारा, परंतु यीशु को ना छोड़ा। कुछ विश्वासी लोग उसके बारे में पता चलने के बाद में उसे अपने घर में ले गए और उसे पनाह दी। यह चंगाई जो उसे प्राप्त की महज एक शारीरिक चंगाई तक ही सीमित नहीं है, परंतु यह पिता की ओर से उसके लिए एक संदेश है कि वह उस महिला की दयनीय हालत को देखता है, उसकी परवाह करता है और उसकी सब जरूरतों को पूरा करता है। इस चंगाई और छुटकारे की शुरुआत पवित्र आत्मा ने आत्माओं की परख के वरदान के द्वारा की थी। परमेश्वर की उपस्थिति और नज़दीकी में बने रहने पर हम सुसमाचार की सामर्थ्य के बहाव में बहते हैं। यीशु हमारा नमूना, प्रारूप या मॉडल। यदि इस पुस्तक में से आप कोई एक बात सीख पाते हैं तो वह यह होनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यीशु की ओर हर बात के लिए देखें और ताकि यीशु हमारे लिए एक नमूना और उदाहरण है जिससे हम सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के साथ नज़दीकी रखना और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु ने जो भी चमत्कार, चंगाई और छुटकारे के काम किए, वे सब उसने मनुष्य के रूप में पिता के अधीन होकर और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर किए। इसी प्रकार से उसने अपने चेलों और कलीसिया के लिए नमूना और उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से उसके चेलों और कलीसिया को अपने जीवन और सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए। अपने जन्म से लेकर क्रूस पर अंतिम सांस लेने तक उसने अपनी ईश्वरीय शक्ति, ज्ञान और महिमा को रोके और छिपाए रखा और मनुष्य के रूप में हर एक चीज़ के लिए पवित्र आत्मा की निर्भरता के साथ जीवन बिताया। किसी भी समय यदि वह चाहता तो पिता से विनती करके स्वर्गदूतों की पलटन को अपनी सहायता के लिए बुला सकता था, मत्ती 26:53। परंतु यदि वह ऐसा करता तो वह हमारे लिए एक नमूना, मॉडल और उदाहरण कभी ना बन पाता। मनुष्य की देह में रहते हुए परमेश्वर के पुत्र ने तब तक कोई भी चमत्कार नहीं किया जब तक पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरा। लूका 3:22, यूहन्ना 2:11, पुनरुत्थान अर्थात पुनर्जीवित हो उठने के बाद और स्वर्गारोहण से पहले उसने यह सख्त आज्ञा दी। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका 24:49। यीशु को पता था कि दुनिया भर में परमेश्वर के राज्य को फैलाने का कार्य उसके चेले बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कभी भी नहीं कर पाएंगे। इंसानी बुद्धि, ज्ञान और बल से कभी भी दुष्ट शक्तियों पर विजय नहीं पाई जा सकती है। जिस प्रकार से यीशु खुद पूरी रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे एवं हमारे अनुसरण के लिए एक नमूना और उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से उसने हमें भी आज्ञा दी है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहें और उसकी सामर्थ्य में आगे बढ़ें। सह भागीदार पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों ही को अधिकृत किया एवं जिम्मेदारी दी गई है कि वे सुसमाचार को दुनिया में फैलाएं। हमें एक ही कार्य और दर्शन दिया गया है। एक बात जो कि बहुत से विश्वासी समझ नहीं पाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ने खुद यह ठहराया है कि उसकी इच्छा लोगों के उद्धार पाने के लिए केवल तब पूरी हो सकती है जबकि हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर अर्थात भागीदारी में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हम पर दबाव नहीं डालेगा, परंतु धीरे और नरमी से हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए आमंत्रित करेगा। कोई भी अनंत फल हम स्वयं अपनी कोशिश से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हमारी सफलता और उपलब्धि केवल पवित्र आत्मा पर निर्भर है, वह ही हमें कामयाबी देता है। निम्नलिखित पदों पर ध्यान दें जहाँ पर हमारे एकीकृत और संयुक्त उद्देश्य मकसद के बारे में बताया गया है। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यूहन्ना 15:26-27। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 1:8। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेरितों के काम 5:32। बहुत सी जगह मैं गया हूँ और बहुत से मिनिस्ट्री सेवकाई में मैंने परमेश्वर के चलन को देखा है। मैं दृढ़ता से यह कह सकता हूँ कि हर एक वह सेवकाई मिनिस्ट्री जिसने पवित्र आत्मा की नज़दीकी, संगति और निर्भरता पर जोर दिया, वह उन सेवकाइयों से कहीं अधिक फलवंत हुई जिन्होंने पवित्र आत्मा की नज़दीकी, संगति और निर्भरता पर जोर नहीं दिया। अधिकार और सामर्थ्य। यीशु ने अपने चेलों को न सिर्फ बीमारों को चंगा करने एवं दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया, पर उन्हें ऐसा करने के लिए सामर्थ्य भी दी। लूका 9:1। अधिकार शब्द मूल यूनानी शब्द एक्सजूसिया से आया है जिसका मतलब है अधिकार क्षेत्र में विधि सम्मत रूप से कार्य करने की योग्यता या क्षमता। जो कुछ भी यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनर्जीवित हो उठने के कारण स्वर्ग में बांधा और खोला था, उन सब चीज़ों और बातों को पृथ्वी पर बांधने और खोलने का अधिकार कलीसिया को यीशु ने दिया। मत्ती 16:19। सामर्थ शब्द मूल यूनानी शब्द डुनासिस से आया है जिसका मतलब है शक्ति या बल। पुत्र होने के कारण आपको अधिकार मिला है, अधिकार आपको सौंप दिया गया है और आपको विश्वास के द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। सामर्थ्य कोई चीज या वस्तु नहीं है जो कि आपके पास है, परंतु सामर्थ्य एक दिव्य व्यक्ति है जिसके साथ आप संगति और संबंध में हैं। सामर्थ्य पवित्र आत्मा का गुण है और यीशु के साथ मिलकर नातेदारी में काम करता है। लूका 4:14, 5:17 और 24:49, प्रेरितों के काम 1:8, 10:48। आइए बात करते हैं एक पुलिस ऑफिसर की जिसे सरकार ने लोगों से देश के कानून का पालन करवाने के लिए अधिकृत किया है। यदि वह लुटेरे को किसी महिला का पर्स चुराते हुए देखता है तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार इस पुलिस ऑफिसर को है, और यदि वह लुटेरा पर्स चुरा कर भागता है तो यह ऑफिसर उसे तुरंत रोकने को कहता है। परंतु उसकी आज्ञा का पालन कोई लुटेरा करता है और कोई नहीं भी करता है और भागने की कोशिश जारी रखता है। इसी कारण सरकार ने उस पुलिस ऑफिसर को लाठी या रिवॉल्वर दी है जिससे कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस लुटेरे को कानून का पालन करने के लिए बाध्य या विवश करे। इस समझ के साथ हमें सुसमाचार प्रचार करने, बीमारों पर हाथ रखने और दुष्ट आत्माओं को निकाले जाने की आज्ञा देने का अधिकार मिला है। पवित्र आत्मा जीवित सामर्थ्य है जो कि हमारे द्वारा बीमारी और दुष्ट आत्माओं को दी गई आज्ञा को लागू और उसका पालन करवाती है और हमारे परिश्रम मेहनत का फल उत्पन्न करता है। चार लोगों का चार्ट। किसी भी चंगाई, चमत्कार और छुटकारे में चार लोग शामिल होते हैं, पिता, यीशु, पवित्र आत्मा और विश्वासी। इनमें से प्रत्येक की भूमिका और जिम्मेदारी को समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम प्रार्थना, विश्वास और उसके उपयुक्त कार्य कर पाएंगे। पाप की भूमिका में पिता पहले से ही यीशु को हमारे लिए पाप बलि ठहरा चुका है। मनुष्य का अपने से मेल कराया और मनुष्य के पाप का लेखा अब मनुष्य से नहीं लेता। बीमारी की भूमिका में पिता मनुष्य की सारी बीमारियों को यीशु के ऊपर रख चुका है। शैतान की भूमिका में पिता सब मनुष्यों को शैतान के वश में से छुड़ा चुका है। पाप की भूमिका में यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर उठा सह चुका है और उनका प्रायश्चित किया, सजा सही और हमारा मेल मिला परमेश्वर से कराया। बीमारी की भूमिका में यीशु हमारी बीमारियों और पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा सह चुका है। शैतान की भूमिका में यीशु शैतान को हरा चुका है, उसे शक्तिहीन निर्बल कर चुका और उसके कार्यों को नाश किया है। पाप की भूमिका में विश्वासी इस बात पर विश्वास और भरोसा रखना है कि यीशु और पिता के द्वारा पूरे किए गए कार्य से हमें पापों की क्षमा मिली है और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। बीमारी की भूमिका में विश्वासी इस बात पर विश्वास और भरोसा रखना है कि यीशु चंगाई ला चुका, अर्थात चंगाई प्रदान कर चुका है। अब तो उसे विश्वासी को बीमारों पर हाथ रखना और चंगाई की सामर्थ का निस्तारण करना है और बीमारी को चले जाने की आज्ञा देना है। शैतान की भूमिका में विश्वासी इस बात पर विश्वास और भरोसा रखना है कि शैतान और उसके कार्य पराजित हुए हैं और अंधकार की आत्माओं को चले जाने की आज्ञा देना है। पाप की भूमिका में पवित्र आत्मा यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करता है और लोगों को पाप, धार्मिकता और न्याय के प्रति कायल निरुत्तर करता है। बीमारी की भूमिका में पवित्र आत्मा यीशु को चंगाई देने वाले के रूप में प्रकट करता है और उसकी चंगाई की सामर्थ को प्रकट करता है। शैतान की भूमिका में पवित्र आत्मा यीशु को छुटकारा देने वाले के रूप में प्रकट करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जो कार्य यीशु पूरे कर चुका, उन कार्यों पर भरोसा करना जताना ही विश्वास है, ना कि वे कार्य जिनको यीशु करेगा। हमारे छुटकारे से संबंधित हर एक कार्य पिता और पुत्र ने पूरा कर दिया है और यीशु और पिता के द्वारा पूरा किया गया यह कार्य आत्मिक क्षेत्र की सच्चाई है। इफिसियो 1:3, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया, विश्वास उसे देखता और हासिल करता है, जबकि अविश्वास अंधा होता है और अंधेपन के कारण परमेश्वर से उस कार्य को करने का निवेदन करता रहता है जो कार्य परमेश्वर पहले ही पूरा कर चुका है। पवित्र आत्मा और विश्वासी के कार्य यीशु और पिता के द्वारा पूरे किए गए कार्य के बिना अधूरे हैं और पूरी तरह से यीशु और पिता के पूरे किए गए कार्य पर निर्भर करते हैं। जब हम पिता और पुत्र के द्वारा पूरे किए गए कार्य पर सहमत होकर विश्वास के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तब पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ कार्य करते हुए यीशु और पिता के द्वारा पूरे किए गए उस कार्य को भौतिक क्षेत्र में प्रकट करता है और उस ईश्वरीय कार्य को जो पिता और पुत्र पूरा कर चुके हैं एक वास्तविक अनुभव और हकीकत बना देता है। जबकि उपयुक्त चार्ट में जो बताया और सिखाया गया है उससे हटकर लोग अक्सर पिता या यीशु से चंगाई के लिए निवेदन करते हैं, जबकि यीशु ने जो कार्य क्रूस पर पूरा किया उसके कारण वह चंगाई को पहले ही उपलब्ध करा चुका है। यदि आप परमेश्वर से वह कार्य करने को कह रहे हैं जो कि वह पहले ही कर चुका है, तो जो आप मांग रहे हैं या कह रहे हैं वह आपको कभी भी ना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपना अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ पिता या पुत्र आपके लिए पहले ही कर चुका है, वह करने के लिए आपको उससे नहीं कहना है, वरन आपको परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हमारे द्वारा तब कार्य करता है जब हम विश्वास में होकर चलते और कार्य करते हैं। यदि जो कुछ परमेश्वर पहले ही कर चुका उसे करने का निवेदन हम परमेश्वर से बार बार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। जो भी हम सोचते हैं, विश्वास करते, बोलते और करते हैं, वह सब परमेश्वर को महिमा देने और उसके द्वारा पूरा किए गए काम को प्रकट, प्रदर्शित और प्रतिबिंबित करें। हमारी सोच, विश्वास, बोलना और कार्य यीशु के द्वारा पूरे किए गए कार्य को ही प्रकट करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई, रहनुमाई द्वारा सशक्त एवं सामर्थी बनना। ताइवान के ताइनैन नगर में चंगाई सभा से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा की मौजूदगी को मैं आमंत्रित कर रहा था। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल रहा था। फिर मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए तत्पर था। मेरे कान आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए लगे हुए थे। तभी मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना यह कहते हुए, आज शाम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होगा जिसकी गर्दन में समस्या है। मुंह दबाकर हंसते और मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, जरूर। वहां सभा में मौजूद 500 लोगों में से कम 20 लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें गर्दन में समस्या होगी। पवित्र आत्मा आपको विस्तार से इस व्यक्ति के बारे में मुझे बताना होगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। बिना देरी किए पवित्र आत्मा ने बताया, वह व्यक्ति एक पुरुष है जिसकी गर्दन का ऑपरेशन हो चुका है। मैंने कहा, इतना काफ़ी है। उस शाम मैं भीड़ के सामने प्रचार करने के लिए मंच पर खड़ा हुआ और प्रचार शुरू करने से पहले मैंने वह ज्ञान का वचन बताया जो पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया था। मैंने कहा, यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जिसकी गर्दन का ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं हुई है और अभी भी आपको चंगाई की ज़रूरत है। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर इस समय खड़े हो जाएं। पीछे की ओर भीड़ में एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है। मैंने कहा, ठीक जैसे ही पवित्र आत्मा ने मुझ पर आपकी अवस्था प्रकट जाहिर की है, चंगे हो जाओ। चंगाई की सामर्थ और मौजूदगी आपकी गर्दन में प्रकट हो, अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाओ। इसके बाद मैंने संदेश का प्रचार किया। अगली शाम वही व्यक्ति अपनी गवाही देने के लिए आगे आया। उसने बताया कि 12 साल से वह भयानक तकलीफ और पीड़ा में था और 9 बार उसे ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ा, परंतु 9 ऑपरेशन के बाद भी उसकी तकलीफ कम नहीं हुई थी। 2 साल पहले वह बाइबल स्कूल भी पढ़ने गया था, परंतु वह अपनी पढ़ाई को वहां जारी नहीं रख सका। भयानक दर्द के कारण उसे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने बताया कि पिछली शाम जैसे ही मैंने उसकी अवस्था का जिक्र किया और वह खड़ा हुआ प्रत्युत्तर में, तभी से उसे चंगाई मिली और वह पूरी तरह से उस भयानक तकलीफ और दर्द से आज़ाद हो गया। सबसे आसान चंगाई, छुटकारे और चमत्कार तब प्रकट होते हैं जब हम पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कान लगाए रहते हैं और जो कुछ वह हमसे करने के लिए कहता है उसे हम करते हैं। अपनी स्वतंत्रता में अपनी इच्छा के अनुसार किए गए विश्वास के सैकड़ों कार्यों से कहीं अधिक फल परमेश्वर के मात्र एक वचन का पालन करने से प्राप्त होता है। घनिष्ठता, नज़दीकी और संवेदनशीलता। यीशु पवित्र आत्मा से प्रेम करते थे और इसकी मौजूदगी और आवाज़ के प्रति संवेदनशील थे। इस घनिष्ठता और संवेदनशीलता के कारण वे हर एक कठिन परिस्थिति का बड़ी कामयाबी से सामना कर पाए। यीशु ने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर काबिज होने दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ और मौजूदगी की वास्तविकता से यीशु बखूबी परिचित थे। यहुन्ना 1:32-33 में हम पाते हैं, और यहुन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया है। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम के बहुत से नबियों भविष्यवक्ताओं पर उतरता था, परंतु यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया। पवित्र आत्मा को यीशु के अंदर अपने प्रति एक अनोखा प्यार, स्नेह, सरपरस्ती, आत्मीयता, लगाव और ग्रहणशीलता देखने को मिली, जो कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति में देखने को नहीं मिली थी। जब यीशु बड़ी भीड़ में से होकर गुजर रहे थे, भीड़ उन पर गिरी जाती थी। लोग लगातार चिल्ला रहे थे और यीशु को छू रहे थे, फिर भी यीशु पवित्र आत्मा की धीमी आवाज़ के प्रति संवेदनशील थे। लूका 8:40-48। यदि हम यीशु जैसी कामयाबी अपनी सेवकाई में देखना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के साथ इस प्रकार से नज़दीकी संबंध बनाना होगा। सच्ची सेवकाई पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ और नज़दीकी संबंध में से फूट निकलती है। सेवकाई में कामयाब और फलवंत होना ही मात्र हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा महज हमारी सेवकाई को कामयाब और फलवंत बनाने ही के लिए नहीं है, परंतु हमें पवित्र आत्मा के साथ गहराई से संगति रखनी चाहिए। पवित्र आत्मा की मौजूदगी और सामर्थ को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं और उसके साथ अपने संबंध को और गहरा और मजबूत बनाएं। मैं आपको उभारना चाहता हूं और प्रेरित करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को गहराई से समझने और उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ने एवं उसके वरदानों के साथ सेवकाई करने के लिए मेरी पुस्तक, जिसका शीर्षक है पिता की प्रतिज्ञा, जरूर पढ़ें। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। पहला प्रश्न, इस अध्याय को पढ़ने से क्या कभी आपको यीशु को एक ऐसे नमूने, मॉडल अथवा उदाहरण की नज़र से देखा था जिससे आप सीख सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता कैसे रखी जाए? किस प्रकार से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने वाला यीशु का जीवन आपको प्रेरित करता है? दूसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या आपके भीतर कभी पवित्र आत्मा को नज़दीकी से जानने की इच्छा या तड़प जागी है? तीसरा प्रश्न, क्या आप पवित्र आत्मा को एक शक्ति, सामर्थ्य के रूप में देखते हैं या उसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं? पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जानना किस प्रकार से उसके साथ हमारे संबंध को प्रभावित करता अथवा बदलता है? चौथा प्रश्न, क्या पवित्र आत्मा सेवकाई में आपका मुख्य सहकर्मी, साथी रहा है या फिर आप स्वतंत्र रूप से बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई में व्यस्त रहे हैं? किस प्रकार से आप सेवकाई के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा को आदर और न्योता दे सकते हैं? पांचवा प्रश्न, परमेश्वर के द्वारा पूरे किए गए कार्य की प्रतिक्रिया में अपने अधिकार और जिम्मेदारी को जानने से आपके सोचने, विश्वास करने और कार्य करने के तरीकों में क्या बदलाव आता है? छठवां प्रश्न, पवित्र आत्मा के किन वरदानों के साथ आप इस्तेमाल हुए हैं या आपने सेवा की है? पवित्र आत्मा के किन वरदानों का आप अनुभव करना चाहते हैं? सातवां प्रश्न, इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्या आप पवित्र आत्मा की नज़दीकी और संवेदनशीलता के प्रति प्रेरित हुए एवं उभारे गए? व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से आप पवित्र आत्मा के साथ नज़दीकी और संवेदनशीलता में बढ़ सकते हैं? आठवां प्रश्न, क्या आप पवित्र आत्मा की नज़दीकी को केवल सेवकाई में कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने का अपने आप को दोषी पाते हैं? किस प्रकार से आप पवित्र आत्मा के साथ अपनी घनिष्ठता को उसके गलत इस्तेमाल से बचा सकते हैं? नौवां प्रश्न, क्या आप सेवकाई से थक गए हैं और आत्मिक तनाव में हैं? किस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता इस प्रकार की थकावट और निराशा, हताशा को दूर कर सकती है?